الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا آتنا علما. تو اس کلاس کے اندر ہم امور خانداری میں حسن انتظام کے سلسلہ بیانات میں سے ایک بیان انتظام خانہ یعنی ہاؤس ہولڈ مینجمنٹ پڑھ رہے ہیں. دو کلاسز اس کی آلریڈی ہو چکی ہیں اور ہم اس میں اب تک جو ہے وہ اس موضوع تک پہنچے تھے جو کہ صفحہ نمبر 184 184 صاف رکھنے والی پانچ اہم چیزیں. تو یہ ہم نے پڑھ کے مکمل کر لیا تھا پچھلی کلاس میں. پانچ اہم چیزیں، سب سے پہلے نیت کو صاف کرنا، یعنی نیت کی صفائی جو کہ دل میں ایگزسٹ کرتی ہے. دوسری چیز بھی دل سے ہی ریلیٹڈ تھی، جس میں ہم نے پھر سمجھایا تھا کہ دل کو صاف کرنے سے پھر کیا مراد ہے. جب نیت کی آلریڈی بات ہو چکی تو اب دوبارہ دل کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ تو دل میں جو برے خیالات آ جاتے ہیں، کینہ، بغض، ایک دوسرے کے بارے میں عداوت، ٹھیک ہے، نفرت، اور جس سے نفرت ہونی چاہیے اس سے نفرت کا نہ ہونا، ٹھیک ہے، یعنی گناہ سے نفرت کا نہ ہونا، یہ دل کو گندہ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس گندگی کو دل سے صاف کرنا یہ دوسری بات تھی، یعنی صاف رکھنے کی دوسری بات. اور تیسری بات تھی کہ بدن کو صاف رکھنا، فزیکل باڈی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اس کو صاف کرنا. اور چوتھی چیز تھی بدن سے چپکی ہوئی جو دوسری چیز ہوتی ہے، جو بدن ہی کی مانند ہوتی ہے، جس کو کپڑے کہا جاتا ہے، تو ان کپڑوں کو بھی صاف رکھنا. ٹھیک ہے، اندر سے باہر چل رہے ہیں نا، سب سے اندر کیا چیز تھی؟ ہمارے دل. ٹھیک ہے، پھر دل سے باہر نکلے تو بدن، پھر بدن سے باہر نکلے تو کپڑے، اور کپڑوں سے باہر نکلے، یعنی باہر نکلے سے مراد یہ کہ کپڑوں کے بعد جو چیز آتی ہے ہم سے قریب، وہ ہمارا گھر، خصوصاً عورت کا گھر. ٹھیک ہے، تو گھر کو صاف رکھنے کی پھر بات کری، اور اس کو کپڑوں کے ساتھ ہی ایک ہی پوائنٹ کے اندر ذکر کیا، گویا کہ کپڑے اور گھر جو ہیں وہ عورت کے لیے بالکل قریب قریب کی چیزیں ہیں، تو ان کو ایک ہی پوائنٹ میں ایک ساتھ ہی ذکر کر دیا. ٹھیک ہے، کافر شیطان کیا عورت کو کہتا ہے؟ کہ گھر سے بھی باہر نکلو اور کپڑوں سے بھی باہر. ٹھیک ہے، کیونکہ شیطان ہی نے جو ہے وہ بنی آدم اور بنی اور بنت حوا کو جو ہے وہ بے لباسی اور بے حیائی کی طرف کیا ہے، کہ اس کو پردے سے باہر نکالا، نہ تو گھر کا پردہ اور نہ جو ہے وہ برقعے کا پردہ. ٹھیک ہے، تو جو اللہ والے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ پھر اس بات کو سمجھتے ہیں اور عورت کو ان دونوں پردوں میں رہنے کی تلقین کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر پانچویں چیز صاف کرنے کی، معاملات کو صاف کرنا. ٹھیک ہے، یعنی جو آؤٹ سائڈ ڈیلنگز ہوتی ہیں لوگوں کے ساتھ، خصوصاً جو کاروباری ڈیلنگز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، لین دین کی جو ڈیلنگز ہوتی ہیں ان کو صاف رکھنا. اور اس کا چونکہ عورت سے سب سے کم واسطہ پڑتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو آخری پوائنٹ میں رکھا. ٹھیک ہے، یہ کام کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری مردوں کو لگائی. ٹھیک ہے، جس طرح مرد بحالت ضرورت گھر کے اندر بھی صفائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے عورت بھی بحالت ضرورت، واقعی جب ضرورت ہوتی ہے تو وہ بھی لین دین کا کام کرتی ہے، لیکن پرائیورٹیز ڈفرینٹ ہیں اور آرڈر ڈفرینٹ ہے. فرسٹ تھنگس فرسٹ، سیکنڈ تھنگ سیکنڈ، تھرڈ تھنگ تھرڈ، فورتھ تھنگ فورتھ، اور ففتھ تھنگ ففتھ. عورت کے لیے جو پانچواں درجہ ہے وہ پانچویں درجے پر ہی رکھا جائے گا، مرد کے لیے جو تیسرا درجہ ہے اس کو تیسرے درجے پہ رکھا جائے گا. یہی ہمارا دین ہے کہ ہر چیز کو اس کے مقام پہ رکھنا. ठीक है। अच्छा, ये टॉपिक, ये तो पीछे की रिकैप हो गई। अब जो है वो अगला उनवान है इसमें, पेज नंबर 184 पे, तरबियत के लिए तफसील बताना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ठीक है, क्योंकि ये सब तरबियती क्लासेस हैं और हम नबी अलैहिस्सलाम ही को अपना मुरब्बी और अपना सबसे बड़ा यानी तरबियत करने वाला मानते हैं बहैसियत मुसलमान, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन्हीं की सुन्नत ये क्या है कि तफसील से, राइट, तरबियत में डिटेल तक जाना पड़ता है, सिर्फ सुपरफिशियल हाई लेवल बात करके तरबियत नहीं हो। तरबियत में तो फिर डिटेल की जरूरत पड़ती है ना, तफसील की जरूरत पड़ती है। तो उसी बात को हज़रत फरमा रहे हैं कि इनमें से आज चूंकि घर के बारे में बात है और ये औरतों की फील्ड है, एक औरतों का फील्ड है, औरतों की फील्ड है, जो भी आप कहना चाहें, इसलिए यकीनी बात है कि औरतें इस मामले में हमसे बहुत ज्यादा जानती हैं, क्योंकि हजरत क्या है, मर्द, ठीक है, और औरतें जो है वो घर के बारे में, क्योंकि वो घर वाली होती हैं, पहली क्लास में टॉपिक पे बल्कि कुरानी आयात भी आपके सामने रखी थी, है ना, कि घर किसका होता है, औरत का होता है। बेशक ओनरशिप जो है वो माली एतबार से मर्द की होती है, आमतौर पे मर्द का घर होता है, ठीक है, खुसूसन शादी के बाद जो है वो औरत फिर अपने माँ बाप के घर को छोड़ के शोहर के घर पे आ जाती है, तो शोहर की मिल्कियत होता है वो इस एतबार से, लेकिन घर वाली, ठीक है, उनके घर अल्लाह ताला ने इस तरह से, तो भाई जिसका जो काम है, जिसका जो फील्ड है, जिसकी जिसकी जो ओनरशिप में है या रिस्पॉन्सिबिलिटी में है, ओनरशिप ना भी हो लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है ना, ठीक है भाई, अगर हमारी किसी ने कोई जिम्मेदारी लगाई है तो उसका मतलब ये तो नहीं होता कि वो हमारी ओनरशिप में भी उस काम को दे दे, ठीक है भाई, हमारी जिम्मेदारी है। मिसाल के तौर पर आप अपने बच्चों को कहें कि जी गाड़ी को ठीक रखना या सफाई करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि गाड़ी के पेपर जो है वो आप उसके नाम पे बनाएं, राइट, और गाड़ी जो है वो आप उसको पहले हदिया करें फिर उसके बाद उससे कहें कि गाड़ी को साफ करना और गाड़ी को ठीक रखना तुम्हारी जिम्मेदारी। नहीं, ओनरशिप तो जरूरी नहीं है ना जिम्मेदारी के लिए, ठीक है। इसी तरह से घर का भी मामला है कि भाई ठीक है, ओनरशिप जो है वो मर्द की है, जब मर्द का इंतकाल होगा, दुनिया से परवास फरमा जाएंगे, तो विरासत उनकी तकसीम होगी, बेगम साहिबा की अगर ओनरशिप नहीं है तो बेगम साहिबा की विरासत के तौर पर तो वो घर तकसीम नहीं होगा ना, लेकिन जिम्मेदारी फिर भी औरत की है, जिस तरह और कामों में जिम्मेदारी किसी और की होती है, ओनरशिप किसी और की होती है। अच्छा, तो फरमाते हैं कि औरतें इस मामले में हमसे बहुत ज्यादा जानती हैं, ठीक है, यानी ये इट्स अ गिवन, अदर इज नॉट इवन आर्ग्यूइंग अबाउट दैट, कि जी मुझे ज्यादा पता है, मैं पीर हूं, मैं शेख हूं, मैं हजरत जी हूं, मुझे ज्यादा पता है, नहीं भाई ये मेरा फील्ड नहीं है, मुझे ज्यादा पता नहीं है, लेकिन ये जो तरबियत वाला काम है ना, ये बहरहाल मेरी जिम्मेदारी, ठीक है, और मैं इसको जो है, हजरत ने ये वाले बयानात क्यों किए, हजरत ने किसी मौलिमा को क्यों नहीं दे दिए, भाई औरतों को समझाना है ना, मौलिमा को दे दें, मौलिमात कम है कोई, हजरत जी की तो ताल्लुक वाली बेशुमार मौलिमात है ना, बड़े की बड़ी बड़ी जो है वो और भी यानी बहुत ज्यादा पढ़ी हुई मौलिमात भी है, ठीक है, तो उनसे क्यों नहीं ये वाले बयानात करवाए, क्योंकि हजरत का जो एक एक नजर है ना, वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव नजर है, ठीक है, 360 डिग्रीज, ठीक है, हजरत जो है वो इसमें मर्दों को भी देखते हैं, औरतों को भी देखते हैं, ठीक है, और घर जो है ना, ये सिर्फ औरत का नहीं है, ये नहीं हो सकता कि आप मर्द को बिल्कुल जो है वो दूध में से मक्खी की तरह से निकाल दें और बस घर जो है वो सिर्फ और सिर्फ औरत का है और मर्द का कोई रोल ही नहीं, भाई मर्द का एक बहुत अहम रोल है इसके अंदर, और फिर औलाद की तरबियत, ठीक है ना, औलाद के अंदर भी तो लड़के भी तो होते हैं ना, बेटे भी तो होते हैं ना, खाली बेटियां को थोड़ी होती हैं, तो इस किस्म का जो एक ओवरऑल व्यू होता है ना, ये अल्लाह ताला ने मर्द को दिया है, ठीक है, इसी वजह से मुझे भी बहुत आए इस किस्म के मशवरे कि आप क्यों पढ़ा रहे हैं ये वाला टॉपिक, आप जो है वो बाजी जान से कहें पढ़वाने के लिए इस वाले टॉपिक को, ठीक है, तो हमने कहा भाई अगर अम्मा जान ने ये टॉपिक पढ़ाया होता ना, तो मैं बाजी जान को दे देता ये वाला टॉपिक पढ़ाने के लिए, ठीक है, लेकिन ये टॉपिक तो पढ़ाया है हजरत जी ने, तो हजरत जी ने तो इस हादिस को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है ना, ठीक है ना, जिसको इजाजत खिलाफत देते हैं, तो ये खिलाफत खाली मुराकबे करवाने के लिए तो नहीं होती है, राइट, कि उनको जो है तस्बीह बता देना, उनको वजीफे बता देना, उनको पढ़ के फूक देना उनके ऊपर, है उनके पानी में दम करके उनको दे देना, या जो है वो बच्चा पैदा हो तो अदान दे देना जाकर के कान में, राइट, और तहनीक करवा देना उसकी। ये तो खाली काम नहीं है ना, ठीक है ना। इल्म सिखाना, पढ़ाना और तरबियत का काम, ये असल जिम्मेदारी है जो कि अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिम्मेदारी जो है सहाबा को मुंतकल करी, और सहाबा ने जिम्मेदारी जो है वो ताबईन को, ताबईन ने तबा ताबईन को, इसी तरीके से मशाइख का ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह चलता चला आ रहा है। ठीक है, तो स्टैंड लेना पड़ता है वरना लोग तो नहीं छोड़ते। अच्छा, मैं अपनी बीवी की बात नहीं कर रहा, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मशवरा नहीं दिया कि मुझे पढ़ाना चाहिए, आप क्यों पढ़ा रहे हैं, नहीं, दूसरी है ना बहुत ज्यादा इल्म वाली, ठीक है, उनको होती है इस किस्म के मसले, ज्यादा किताबें पढ़ लेते हैं, तो फिर यही होता है। तो तरबियत है ना वो पीरनी साहिबा ही करें, ठीक है ना। वो पीरनी साहिबा जो है ना वो एक जबरदस्त किस्म का एक फिनोमिना है आज के दौर का। वो कहती हैं जी बस पीरनी ही होनी चाहिए सब कुछ, ठीक है, पीर को नहीं मानना, पीरनी को मानना, खुद भी पीरनी बनना है, ठीक है। ये बहुत बड़ा मसला है, हमें इसका इदराक नहीं हो रहा कि ये कितना बड़ा मसला है, ठीक है। अल्लाह के निज़ाम को तब्दील करना है, लेकिन हम नहीं समझते इसको, हम समझते हैं वो कोई नहीं, ये तो बस नेचुरल सी बात है, ये कोई नेचुरल सी बात नहीं है, एब्सोल्युटली अननेचुरल बात है, क्योंकि अल्लाह के बनाए हुए निज़ाम के खिलाफ जो भी बात जाएगी वो अननेचुरल होगी, वो नेचुरल नहीं होगी, ठीक है। तो हजरत जी ने इस बात को एक्नॉलेज किया कि घर की तफसीलात जो है वो हमें नहीं पता, लेकिन हम मशवरा तो करते हैं ना, हम पूछते तो है ना, पूछ के चलते हैं, जो चीज हमें नहीं पता वो हम जिनके पास इल्म है उस चीज का उससे हम पूछेंगे, अल्लाह के हुक्म पे अमल करेंगे, ठीक है। बस अलू अहल जिक्रे इन कुन तुम ला तालम, ठीक है, इल्म वालों से पूछो अगर तुम्हें उस चीज का इल्म नहीं हो, ठीक है। तो मशवरा करना ये भी सुन्नत है, जिसके पास किसी फील्ड का ज्यादा इल्म है उससे मशवरा करना। तो आपका क्या ख्याल है, ये हजरत जी ने जो ये पूरा का पूरा बयान किया है ये कोई मुराकबे करके किया है कि मुराकबे में फैज आ रहा था घर के मैनेजमेंट के बारे में और उस फैज के नतीजे में हजरत ने पूरा बयान कर दिया? नो, इट डजंट वर्क लाइक दैट। मुराकबे में इस किस्म का फैज नहीं आता, ठीक है। हजरत ने कैसे किया है, मशवरे करके, पूछ करके अपने घर की खवातीन से, अपनी और महरम खवातीन से, और इन बातों को क्लोजली ऑब्जर्व करके, क्लोजली ऑब्जर्व करके, ठीक है, तब ये बयान मुरतब किया और ये बयान किया, ठीक है। तो ये होता है तरीका, या तो आप खुद किसी चीज का पूरा निजाम संभालें, उसका इल्म हासिल करें और फिर उस चीज को चलाएं, ठीक है, तो फिर आपके पास उस चीज का इल्म होगा और आप खुद से जो है वो उस चीज को हैंडल कर सकेंगे। दूसरा क्या तरीका है, फसलु अहल जिक्र इन कुंतुम ला तालम, कि पूछो जिनके पास उस चीज का इल्म है उनसे पूछो, फिर उसकी समझ हासिल करो और फिर उसके बारे में जो है वो कुछ तुम कर सकते हो, बात कर सकते हो, समझा सकते हो, दूसरी अपनी दूसरी इल्म से उसको कंबाइन करके, तदबीक करके, और उसको जो है वो यानी ज्वाइन करके फिर तुम एक ओवरऑल पिक्चर दे सकते हो किसी को उसके बारे में। ये जरा मुश्किल सा टॉपिक है लेकिन इस क्लास में चला आया है, लेकिन है बहुत अहम टॉपिक, ठीक है। इसको कहते हैं कि यानी इस ये क्यों किया जा रही है, इस टॉपिक के ऊपर बात क्यों की जा रही है, इसलिए कि पता है नहीं लेकिन इस गुमान में कि मुझे सब कुछ पता है कोई बात करना शुरू कर देना, ये बुराई है, ये गलती है, ठीक है। लेकिन अगर पता नहीं है तो जिनको पता है उनसे पूछ पूछ करके, सीख सीख करके, फिर अपने बाकी इल्म से जो कि आपको पता है उससे ज्वाइन करके कोई बात करना, ये बुरा नहीं है, ये बुरा नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ये दो अलग अलग चीजें, ये दो अलग अलग बातें, एक बात गलत है दूसरी बात सही है, बल्कि बाकायदा अल्लाह का हुक्म है उसके ऊपर अमल है दूसरी बात में, फसलु अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, ठीक है। मसला ये हो जाता है कि जिनको कुछ पता नहीं होता ना वो पूछते भी नहीं है और पूछे बगैर ही शुरू हो जाते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर सियासत, ठीक है ना, मुल्की मामलात, एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज, ठीक है, अब औरत को इसके बारे में डायरेक्टली नहीं पता होता, ठीक है, अनलेस कि वो खुद सियासत में घुसी हुई हो, पर्दे को तोड़ करके, अपने घर को छोड़ करके वो खुद सियासत में घुस जाए तो फिर तो शायद उसको कुछ पता चल जाए। लेकिन जो पर्दे में रह रही है और अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रही है, उसको तो मुल्क की सियासत का नहीं पता ना, उसको तो मुल्क की सियासत का नहीं पता ना। लेकिन अब वो जो है ना, वो शुरू हो जाए मुल्क की सियासत के ऊपर, नहीं ये ऐसे होना चाहिए, ये सही है, वो गलत है, वो ऐसा नहीं कर रहा, उसको नहीं ठीक ठीक नहीं करना आता, उसको ये ठीक करना चाहिए, उसको ऐसे करना चाहिए। वो भाई तुम्हें क्या पता यार, तो आपने इल्म हासिल तो किया नहीं है, आपने जिनको पता है उनसे पूछा तो है नहीं, आप जो ऐसी शुरू हो गई है मुल्क की सियासत के बारे में। ये तो एक मिसाल दे रहे हैं खाली, मुल्क की सियासत ऐसी शुरू हो गई है मुल्क की सियासत के बारे में, ठीक है, तो ये गलत चीज है ना। अब देखिए हजरत बहुत इल्म वाले हैं, बहुत पूरी दुनिया घूमे हैं, बहुत लोगों का इनसे इस्लाही ताल्लुक है, मर्दों का ही खाली नहीं, औरतों का भी इस्लाही ताल्लुक है, लेकिन इस बात को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि भाई ये मुझे नहीं पता ये वाली बात, ठीक है, तो लोगों से पूछ करके, औरतों से बात करके, अपनी बेटी से, अपनी बहनों से, अपनी बीवी से, ठीक है, उनसे फिर ये सारी इंफॉर्मेशन गैदर करके फिर जो है वो हमारे सामने पेश कर रहे हैं, ऐसे नहीं पेश कर रहे, ठीक है। तो फरमाते हैं कि चंद बातें जो औरतों के लिए फायदेमंद होंगी वो आज बयान कर दी जाती हैं। अब बाज औरतें महसूस करेंगी कि ये भी भला कोई इस्लाह का उनवान है कि घर को कैसे साफ रखा जाए। तो देखें, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नहाना सिखलाया, ठीक है, ये गुसल के फराइज और गुसल कैसे करना चाहिए ये किसने सिखाया, नबी अलैहिस्सलाम सलाम ने सिखाया है ना, ठीक है, लोगों ने खुद से तो नहीं यानी फिगर आउट कर लिया कि भी गुसल के फराइज क्या होने चाहिए, नबी अलैहिस्सलाम सलाम ने बताया ना। वॉशरूम में जाना सिखाया, जैसे कि हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु की मशहूर हदीस है कि वो बता रहे थे अपने शागिर्दों को कि भाई बाथरूम ऐसे इस्तेमाल करना चाहिए, तो किसी यहूदी ने देख करके उनके ऊपर तंज किया कि तुम्हारे नबी तुम्हें ये भी सिखाते थे, तो हाँ मैं हमारे नबी हमें ये भी सिखाते, ठीक है, कि कैसे जो है वो बाथरूम इस्तेमाल करें। बस खुदा ना खास, इसका मतलब ये नहीं सदर खोल करके लोगों के सामने खड़े हो गए, नहीं, बल्कि तरीका कैसे जो है वो तहारत हासिल करनी है, कैसे जो है वो नजासत से, नापाकी से बचना है, ठीक है, तो वॉशरूम में जाना सिखाया नबी अलैहिस्सलाम सलाम ने, हत्ता के थूक फेंकना भी सिखाया। अब थूक फेंकना कौन सा काम नजर आता है, मगर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस लेवल पर जा करके हमें सिखाया कि ये काम हमने कैसे करने, ठीक है। अब थूक फेंकने का तरीका के बारे में होता है कि भाई क्या मतलब नबी अलैहिस्सलाम सलाम ने थूक फेंकना सिखाया, तो भाई ये नहीं कि मुंह से जो है वो थूक को कैसे जो है वो जमा करना है मुंह के अंदर और कैसे जो है फिर उसको बाहर निकालना है, जैसे लोगों को जो है वो थूक बाहर निकालना आता नहीं था उससे पहले, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है, बल्कि थूक फेंकना सिखाया का मतलब ये कि नबी अलैहिस्सलाम सलाम ने बाकायदा बताया कि थूक जो है वो तुमने किबले की रुख में नहीं फेंकना है, किबले की रुख में थूक फेंकना जो है ये बाकायदा इसके ऊपर अजाब होगा। नबी अलैहिस्सलाम का एक हदीस है, अबू सुनन अबू दाऊद की हदीस है कि जिसने किबला रुख होकर के थूक फेंका तो कयामत के दिन उसका थूक जो है वो उसकी दोनों आंखों के दरमियान होगा, यानी उसके पेशानी पे लगा हुआ होगा किबला रुख। तो ये थूक फेंकने के बारे में एक इल्म दे रहे हैं ना कि भाई थूक फेंकने भी तुमने डायरेक्शन का ख्याल करना है, तुमने हर सिमत में ऐसे ही जो है नहीं बस थूक मुंह में आया और बस बगैर सोचे समझे तुमने थूक फेंक दिया, नहीं, किबला रुख नहीं थूक फेंकना है, ठीक है, घर पे नाली है उसी तरफ हो तो क्या, घर पे लिखने से पहले जरा देख लिया करें, ठीक है, एंटर करने से पहले कि आप कुछ जो चीज है उसको लिखी जो है उसको पढ़ना भी मुमकिन होगा पढ़ने वाले के लिए। अच्छा, तो थूक फेंकने का तरीका, अब और थूक फेंकने के बारे में हदीस में मिलती है, जैसे बुरे ख्वाब वाली वाली आपने सुना ही होगा कि अगर किसी को बुरा ख्वाब आए तो फिर वो बाएं तरफ 3 दफा थुतकार दे, ठीक है, यानी बाकायदा ये नहीं कि बिस्तर के लेफ्ट साइड जो है उसको गंदा कर दे, कारपेट गंदा कर दे थूक फेंक करके, बल्कि थुतकार दे, गोया कि थू 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 जिस तरह से करते हैं ना, ठीक है, तो अब उससे बाकायदा थूक तो नहीं निकलता कि भाई हलक में से बाहर निकाल करके फिर उसके बाद जो है वो बेडरूम के अंदर थूक रहे हैं, तो पता चला जो है वो घर में रहने वाले सारे फिर आपके दुश्मन हो जाएंगे कि ये आपने क्या किया, घर को गंदा कर दिया, ठीक है, बल्कि थुतकार दे इस तरह से लेफ्ट साइड पर अगर बुरा, यानी थूक के बारे में भी नबी अलैहिस्सलाम हमें सिखा रहे हैं, ये दिस इज द पॉइंट, ये पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। तो तरबियत में तो फिर इतनी इस लेवल ऑफ डिटेल की जरूरत पड़ती है ना। तो नबी अलैहिस्सलाम तो बड़ों को तरबियत दे रहे थे, सहाबाए कराम बड़ी उम्र के लोग थे, लेकिन खवातीन जो हैं ये तो बच्चों की तरबियत करती हैं, तो सोचें कि बच्चों की तरबियत में तो और भी ज्यादा तफसील की जरूरत होगी ना, ठीक है। तो सीखेंगे तो फिर आगे बच्चों को इतनी तफसील के साथ तरबियत भी कर सकेंगे ना, सही। ये थुतकारना भी किबला रुख ही होना चाहिए। हाँ जी, किबला रुख तो सोते कैसे हैं कि सोने का बिल्कुल सही तरीका क्या है कि किबला जो है ना वो उसकी तरफ पैर तो नहीं होना चाहिए ना, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। तो सर होना चाहिए किबले की तरफ, या जो है वो आपका चेहरा जो है वो किबले की तरफ, यानी आपके दाएं साथ पे, दाएं हाथ पे जो है वो किबला हो, ठीक है। तो जब थुतकारेंगे बाईं तरफ तो फिर किबला तो दाईं तरफ है, या किबला तो जो है वो आपके पीछे की तरफ है, अगर आपकी सर का रुख जो है वो किबले की तरफ है तो फिर किबला तो आपके पीछे की तरफ है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड पे तो पड़ेगा ही नहीं ना, अगर आप यानी सुन्नत का ख्याल कर रहे हैं तो फिर सोएंगे भी तो सुन्नत ही डायरेक्शन में ना, ठीक है। तो फरमाए के अब थूक फेंकना कौन सा काम नजर आता है, मगर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस लेवल पर जाकर के भी हमें सिखाया कि ये काम हमने कैसे करना है। हम तो एहसान मंद है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, कि अगर वो ना सिखाते तो हमें तो थूक फेंकना भी ना आता। तो जब तरबियत करनी होती है तो तफसील में जा करके बात करनी होती है, ठीक है। जैसे कि हम तफसीर क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं सूरह अनआम की आयात पढ़ रहे थे ना, कि जिसकी तफसीर में लिखा था कि काफिर जो है वो नबी अलैहिस्सलाम से क्या डिमांड करते थे कि आप हमें मुस्तकबिल की सारी खबरें बता दें, ठीक है ना, आप हमें मुस्तकबिल की सारी खबरें बता दें, बाकी हम सब खुद फिगर आउट कर लेंगे कि कैसे जो है वो अपने आप को बचाना है नुकसान से और कैसे जो है वो फायदे हासिल करना है, ये आप हमें ना बताएं। ये काफिर का नुक्ता नजर होता है, ये काफिर का रवैया होता है, जिसके ऊपर पे अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम को फरमाया कि आप इनसे कह दीजिए कि मैं तुमसे ये कब कहता हूँ कि मैं आलिमुल गैब हूँ, ये मुझे गैब का इल्म है ना, याद है ना सूरह नाम की आया की तफसीर में हम यही पढ़ रहे हैं ना आजकल। ईमान वाले का क्या नजरिया है और उसका क्या एटीट्यूड है कि नबी अलैहिस्सलाम से थूक फेंकना भी सीखना है। अब सोचें कितना जमीन आसमान का फर्क है दोनों के अंदर। वो कहते हैं कि हमें आप ज्यादा फ्री मत हो, ज्यादा हमें बताने की जरूरत नहीं है आपको, बस हमें इवेंट्स बता दें, बस आप हमें इवेंट्स बता दें, बाकी हम खुद करेंगे अपनी अकल से। और ईमान वाला उसका एटीट्यूड क्या है कि बाथरूम जाना भी आपसे सीखेंगे, नहाना भी आपसे सीखेंगे, थूक फेंकना भी आपसे सीखेंगे, राइट। अब हम किधर खड़े हुए हैं, हमारा ये एटीट्यूड है नबी अलैहिस्सलाम के साथ कि हम आपसे सब कुछ सीखेंगे, ठीक है, अगर नहीं है तो बना लेना चाहिए, ठीक है, आज से इरादा कर लें कि हमने सब कुछ नबी अलैहिस्सलाम से सीखना है, यानी आप की सुन्नतें सीखनी है, ठीक है। आगे फरमाते हैं कि जी बच्चों की तरबियत के चंद अहम नुकात। तो पहली बात जिसमें अक्सर औरतें गलती करती हैं कि बच्चों पर शाउट करना, चीखना और चिल्लाना उनकी आदत होती है, ठीक है। अब चीखना चिल्लाना अनफॉर्चुनेटली ये बहुत आम है और इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, फ्रस्ट्रेशन इसकी, ठीक है, कि भाई बस गुस्से की तबीयत है और गुस्से का कोई इलाज नहीं कर रही, भाई ठीक है किसी वजह से आपके अंदर गुस्सा आ गया है, लेकिन जब आपके पास इल्म पहुंच गया कि भाई गुस्सा बुरी चीज़ है, गुस्सा हराम है, गुस्सा नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ है, जब ये इल्म आ गया आपके पास तो फिर आप इस गुस्से का इलाज करने की कोशिश करें, ठीक है ना, इस गुस्से को दूर करने की कोशिश करें, जिसमें सबसे पहला काम दुआ करना, अल्लाह ताला से मदद मांगना कि अल्लाह आप इस गुस्से से मुझे निजात दिला दें। ये गुस्से को खत्म करने की कोशिश का पहला स्टेप है, जिस तरह हर चीज का पहला स्टेप दुआ करना अल्लाह ताला से, ठीक है, क्योंकि ईमान वाला समझता है इस बात को कि अल्लाह की मदद के बगैर मैं कुछ भी नहीं कर सकता, कितनी कोशिश कर लूं मैं नहीं कर सकता ये वाला काम, ठीक है। तो अल्लाह से मदद मांगना यानी दुआ करना। तो भाई गुस्सा है, शाउटिंग आपकी आदत बनी हुई है, चीखना चिल्लाना घर के अंदर जो है वो हर वक्त। हमारे हजरत क्या फरमाते हैं कि चीखने की सिर्फ एक मौके पर इजाजत है, जब आग लग गई हो घर में, खुदा ना खास्ता आग लग गई हो ना, तो बस अब जो है ना वो आपने नरम मुलायम लहजे में लोगों को नहीं बताना कि जी सर आग लग गई है, अब जरा भागने की कोशिश करते हैं। उस वक्त चीखना है भागो, क्योंकि जरा सी देर हो गई तो आग जो है ना वो अपनी लपेट में ले लेगी, बस इसके अलावा चीखने की इजाजत नहीं। ठीक है, तो इतना ज्यादा जो है वो इस मामले में स्ट्रिक्ट है कि चीखने की बिल्कुल इजाजत नहीं है। बचपन का माहौल होता है और बहुत सारे दूसरे मसले होते हैं जिनकी वजह से आदतें हमारी बन गई होती हैं, तो भाई अल्लाह से मदद तो मांगे ना कम से कम, कि अल्लाह इस आदत को दूर फरमा दे। तो फरमाते हैं कि ये अच्छी आदत नहीं होती, हमेशा बच्चों को ऑल्टरनेटिव्स दें, मुतबादल दें। मसलन बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं और कमरे की चीजों को तोड़ फोड़ रहे हैं, यानी घर के अंदर फुटबॉल खेल रहे हैं, तो उनको मुतबादल दें कि बच्चों यहाँ खेलने के बजाय बाहर खेल लो, हॉल में खेल लो, यानी किसी ऐसी जगह जहां पे टूटने वाली चीजें ना हो। अगर बाहर जाना मुमकिन नहीं है, बहुत सर्दी हो रही है या बहुत गर्मी हो रही है, तो अब उस वक्त तो बच्चे बाहर नहीं जा सकते ना, या ये कि बाहर जो है वो जैसे ही घर खोला सामने ट्रैफिक, तो अब तो बाहर नहीं जा सकते, या और कोई नुकसान का अंदेशा है बाहर निकलने में, जैसे कि गैर लोग हैं, बच्चे छोटे हैं तो वो अगवा करके लेके जा सकते हैं, या खुदा ना खास्ता किसी और किस्म का नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो अब तो उनको घर के अंदर ही कहीं ऐसी जगह पे खेलने की इजाजत देनी होगी कि जहाँ पे टूट टूटने फूटने का जो है वो अंदेशा ना हो। या इस किस्म का अगर मसला है, बाहर खेलने की जगह नहीं है, तो घर में कोई ऐसी जगह बना दे जहां पर ऐसी चीजें ना रखी हुई हो, है ना, उन चीजों को टूटने के जो एहतमाल होता है उन चीजों को कहीं और मूव कर देना चाहिए। ठीक है, ये लिखने के पॉइंट्स हैं, इंशाल्लाह जरूरत पड़ती है घरों के अंदर इस किस्म के कामों की, कि घरों फिर घर में कोई ऐसी स्पेस बना दें जहां पर वो फुटबॉल खेल सके, अगर उनके लिए बाहर जाके फुटबॉल खेलना मुमकिन नहीं है। ठीक है, तो कोई दूसरी जगह बता दो, ये मत कहो कि मत खेलो। ठीक है, मतलब इसका यह है कि जब उनका खेलने का वक्त है, जब जो है वो उनकी और कोई करने का काम नहीं था जो कि ज्यादा अहम था, तो उस वक्त उनको खेलने दें, उस वक्त उनको खेलने दें, ये मत कहें कि मत खेलो और बैठ जाओ बस। ठीक है, क्योंकि ये उनका खेलने का वक्त है। सही है, अब खेलने का वक्त जो होता है ये बच्चे की उम्र पे डिपेंड करता है, छोटा बच्चा जो है ये सिर्फ खेलता है, ठीक है ना, जैसे ही वो खेलने के काबिल बनता है, इतना बड़ा हो जाता है कि वो खेलने के काबिल हो जाता है 1 साल की उम्र, ठीक है, उसके बाद से अब उसको सिर्फ खेलना है, उस वक्त उसको पढ़ाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, जैसे 3.5 साल का बच्चा हो गया, तो अब थोड़ा सा टाइम जो है वो पढ़ने के लिए, बहुत थोड़ा सा, और बाकी बल्कि खेल के अंदर ही पढ़ना, जिसको प्ले स्कूल या प्ले स्कूलिंग प्ले एजुकेशन भी कह सकते हैं, ठीक है, तो वो भी खेल के दौरान ही होता है, और फिर जैसे जैसे बड़े होते हैं तो फिर थोड़ा थोड़ा सा पढ़ने का टाइम बढ़ता है और खेलने का टाइम कम होता है। ठीक है, और ये जाहिर है फिर बढ़ता जाता है इस तरीके से, ये प्रोपोर्शन जो है वो ये स्लाइड करता चला जाता है। ठीक है, तो खेलने का टाइम क्या है वो उम्र पे डिपेंड करता है बच्चे की, अगर उसका खेलने का टाइम है उसकी उम्र के हिसाब से, तो उसको ये मत कहो कि मत खेल, बल्कि उसको ऑल्टरनेटिव दो। ठीक है, फर्ज करें कि अगर बच्चे लैपटॉप पर बैठे कार्टून देख रहे हैं और आवाज बुलंद की हुई है, आप उनको रोकना चाहती हैं, तो आप उनको स्टोरी बुक यानी कहानियों की किताब दे दें, या कोई और अच्छी चीज दे दें, या पजल्स दे दें जिसको वो जोड़ें, या वो खिलौना दें जिससे वो खुश होकर के खेलते हैं। ठीक है, तो अब लैपटॉप पे बैठ के कार्टून देखना, ये नहीं कहा कि लैपटॉप की थोड़ी सी आवाज कम कर दें, बल्कि लैपटॉप पे बैठ के कार्टून देखना ये एक बिल्कुल अल्टीमेट रिजोर्ट के तौर पे होना चाहिए, कि जबकि और कोई काम वो नहीं कर सकते हो, कोई और तरीका खेलने का ना हो, तब लैपटॉप पे सिर्फ हलाल जायज और प्री स्क्रीन्ड कार्टून। ठीक है, प्री स्क्रीन का मतलब यह है कि जिसका पता हो आपको कि जी इसके अंदर कोई बुरी चीज नहीं आनी, कोई बुरे अल्फाज नहीं आने हैं, कोई बुरे एक्शंस नहीं आने हैं, कोई बुरी शक्लें नहीं आनी है, इस किस्म के, ठीक है। तो ये एक फाइनल रिजोर्ट के तौर पर, लेकिन ये नहीं कि बस तंग कर रहा है बिठा दिया लैपटॉप के सामने उसको, ठीक है, या फोन, आजकल तो लैपटॉप की जरूरत नहीं होती, फोन जो है वो पकड़ा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो स्क्रीन होती है ना, ये जो लैपटॉप की स्क्रीन, फोन की स्क्रीन होती है, ये जितनी कम उम्र होती है बच्चे के लिए उतना ज्यादा नुकसानदेह होती है, ठीक है। इसकी रेडिएशन होती हैं, इसके जो है वो और मसले होते हैं जिसकी वजह से कि बच्चों के लिए, और फिर वो एडिक्टिव भी होती है, ये चीजें जो होनी है, ये चीजें जो हैं ये नशा होती हैं, और इनका नशा जो है ना वो अब तो बहुत डॉक्टर्स भी इसके ऊपर बात करते हैं कि इनका नशा जो होता है वो इवन हेरोइन के नशे से, यानी वो जो मनशियात होती है ना, जिसमें हेरोइन जो है वो बड़ी बुरी मनशियात, और आजकल जो है वो उससे भी बुरी एक चीज आ गई है, आइस जिसको कहते हैं, ठीक है। ये स्क्रीन का जो नशा होता है ये उससे भी ज्यादा खतरनाक होता है, ठीक है, जिस्मानी तौर पर। रूहानी तौर पर तो यानी बिल्कुल खत्म कर सकता है ना, बिल्कुल काफिर बना सकता है बच्चे को, या तो हम जिस्मानी बात कर रहे हैं, ये जिस्मानी तौर पर बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। तो उसको फिर स्टोरी बुक, अच्छा ये स्टोरी बुक्स पे लगाना बच्चों को ये आसान काम नहीं होता, इसकी भी एक टेक्निक है, इसकी भी बल्कि एक साइंस है, वो ये है कि बच्चे जो होते हैं ना वो जो बड़ों को करता हुआ देखते हैं ना वो वही करते हैं, ठीक है ना। ये अच्छे खासे अल्लाह ताला है ना, शुरू उम्र में इंसान को अच्छा खासा जो है वो मंकी नुमा बनाया है, ठीक है, बंदर नुमा, उर्दू वाला बंदर, ठीक है, जो कि कॉपी करता है, ठीक है। हम भी सारे के सारे, हम भी को ये नहीं है कि अब बच्चे बंदर हैं, हम बंदर नहीं थे, जब हम छोटे थे हमारी भी एक खासियत देख के कॉपी करना, ठीक है ना। अब अगर कभी घर में कोई शख्स जो है वो किताब उठाता ही नहीं है, किताब से कोई वास्ता ही नहीं है, है ना, घर में बाकी सारी चीजें किताब है ही नहीं, किताब कभी खोली नहीं, किताब कभी हाथ में ली नहीं, तो बच्चा भी जो है ना वो किताब को नहीं पकड़ना चाहता। अब हर वक्त जो है वो फोन हाथ में है, हर वक्त जो है वो स्क्रीन के सामने बैठे हुए हैं, तो बच्चा तो फिर वही करना चाहेगा ना जो कि उसके बड़े कर रहे हैं। इसलिए बुक रीडिंग की आदत डालने के लिए सबसे पहले जो है ना वो खुद कुछ बुक रीडिंग करनी पड़ती है, ठीक है। तो शुरू में तो बच्चे के साथ बैठ कर के बुक रीडिंग करनी होती है, वो अकेले कैसे करेगा, उसको तो नहीं आती है ना, ठीक है। एक बच्ची है जिसको मैं जानती हूँ, स्क्रीन देखकर अपनी अम्मी से कहती है कि प्लीज अम्मी एक बार पूजा करने दीजिए, ये ऐसी 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 बात हो रही, ठीक, स्क्रीन पे पूजा देख रही है वो, तो उसको पूजा करनी, पूजा का मतलब पता है ना, वर्शिप, राइट, बुद्ध की वर्शिप, या जो पूजा वाले एक्शंस होते हैं, वर्शिपिंग वाले बुतों को, ठीक, योगा के जैसे एक्शन होते हैं, ठीक है, वो पूजा के एक्शन होते हैं जो एक्चुअली योगा के अंदर किए जाते हैं, और इसकी रूट भी वैसे भी हिंदुओं की पूजा ही है योगा की, ठीक है। तो जो देखेंगे वो करने की चाहेगी, ठीक है, जाहिर है ऐसा, आपने जो देखा है वो ऐसे ही हकीकत। क्या बेबी राइम्स भी म्यूजिक में ही इंक्लूड होती हैं? जी, बेबी राइम्स भी म्यूजिक में इंक्लूड होती हैं, ठीक है। अच्छा, तो मुतबादल दें, कार्टून जो है वो पहले तो बिल्कुल भी नहीं होते थे, लेकिन पिछले 10-15 साल से कुछ ऐसे कार्टून जो जैसे जैसे जो है वो लोग दीन की तरफ आए हैं, और म्यूजिक से जो है वो उनको कम से कम काफी लोगों ने इस बात को तस्लीम किया कि हाँ भी म्यूजिक नहीं होनी चाहिए, नुकसानदेह होती है, और दीन में भी मना है, वैसे भी नुकसानदेह होती है, तो फिर जो है ना वो म्यूजिक फ्री कार्टून, इस्लामिक कार्टून जो है वो कुछ अवेलेबल हैं, ज्यादा नहीं है लेकिन कुछ है, ठीक है। तो लेकिन वो ज्यादा नहीं, क्योंकि स्क्रीन टाइम का मसला अलग है, स्क्रीन टाइम का इश्यू जो है ना वो अपनी जगह पर फिर भी है, चाहे इस्लामिक कार्टून क्यों ना, इस वजह से उसको बहुत ही रिस्ट्रिक्ट करना और कम करना। और इंटरनेट से अगर कनेक्टेड है आपका फोन और उसके ऊपर आप इंटरनेट से जो है वो कार्टून देख रहे हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखें कि उसके अंदर एड्स भी आ सकते हैं, और आते हैं, और वो जो एड्स होते हैं ना उनका फिर कुछ पता नहीं होता कि किस किस्म के एड्स हैं, इस वजह से बच्चों के हवाले कर देना कि वो अब जहां बैठे हुए हैं अपनी तरफ स्क्रीन करके जो है ना वो देख रहे हैं चीज, कार्टून देख रहे हैं या कोई और, ठीक है, ऐसे नहीं, बल्कि स्क्रीन का जो रुख है ना वो माँ की तरफ होना चाहिए कि माँ को भी वो स्क्रीन नजर आए, ठीक है, या घर के अंदर कोई और रिस्पॉन्सिबल बड़ा है, बड़ी बहन है, बड़े भाई हैं, उनको वो स्क्रीन नजर आए, क्योंकि क्योंकि स्क्रीन पर एकदम से कोई चीज फ्लैश हो सकती है। ठीक है, वैसे तो बच्चों की जहन साजी भी ऐसे करते रहना चाहिए कि वो खुद भी ऐसी कोई चीज आए ना तो वो खुद ही अपना चेहरा फेर ले। अल्हम्दुलिल्लाह जिन घरों के अंदर तरबियत होती है और वाकई इन बातों का ख्याल रखता है, वो बच्चे खुद अपना चेहरा फेर लेते हैं या खुद अपने कानों के अंदर उंगली डाल लेते हैं। ठीक है, आज के दौर के अंदर भी ऐसा हो रहा है, ऐसा करते हैं लोग अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, लेकिन वो ऐसे ही होता है ना कि जब आप पहले से इन चीजों का ख्याल रखते हैं और बच्चों के सामने इन चीजों को बुरा की तौर पे ट्रीट करते हैं, रोकते हैं, उनको मना करते हैं, उनको समझाते हैं, तब उनके जहन में ये बात आती है ना कि अच्छा जब म्यूजिक आएगी तो मुझे कानों में उंगली ठूसनी है, या कोई ऐसी चीज आएगी तो मुझे अपना चेहरा जो है वो दूसरी तरफ कर लेना है। खुद से उनके ऊपर वही तो नहीं आएगी ना, ये तो माँ ने समझाना होता है ना, बाप ने समझाना होता है ना बातों को, और करके दिखाना होता है इन बातों को, तब बच्चा जो है वो ऐसे करेगा ना। ठीक है, इस नुक्ते को बहुत अहम समझे कि माँ को अपने बच्चों का पता होना चाहिए कि ये क्या चीज दिलचस्पी से खेलते हैं, और उसके पास उसकी एक बैकअप लाइन होनी चाहिए। बैकअप लाइन यानी अगर ये नहीं अवेलेबल है तो फिर दूसरी चीज, दूसरी चीज अवेलेबल नहीं है तो तीसरी चीज, तीसरी चीज अवेलेबल नहीं है तो फिर चौथी चीज, इसको कहते हैं बैकअप लाइन। ठीक है, यानी सिर्फ एक ऑल्टरनेटिव नहीं बल्कि एक के बाद दूसरा ऑल्टरनेटिव, अगर पहला नहीं है दूसरे के बाद तीसरा ऑल्टरनेटिव, अगर दूसरा नहीं। ठीक है, तो उसके पास एक बैकअप लाइन होनी चाहिए, पहला प्लान क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, इसको फॉल बैक प्लान्स भी कहते हैं, फॉल बैक प्लान्स। ठीक है, अगर बच्चा एक चीज नहीं खेलना चाहता तो दूसरा बता दें, वो नहीं खेलना चाहता तो तीसरा बता दें, अगर लड़की है तो उसको कहें कि अच्छा आओ मेरे साथ मिलकर होम कुक यानी कुकिंग, घर में पकाने की चीज कोई बनाते हैं, होम कुकिंग करते हैं, यानी बाहर से खाली जो है वो कुकीज नहीं मंगवानी बल्कि घर में कुकीज बना लेते हैं, राइट। उसी तरह से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ये तो जहन में भी नहीं आ रही, क्या कहते हैं उसको, मफिन्स वगैरह। ठीक है, तो वो घर में बच्चे जो है वो आराम से कुक कर लेते हैं, बेक कर लेते हैं, तो बच्चियां ऐसे कामों में लगकर वो काम छोड़ देती हैं कि जिसको वो कर रही होती हैं, जो कि नुकसानदेह काम था उसको छोड़ देती हैं। ठीक है, ओट बार्स है, ओट बार्स को तो मैंने पहले भी सुना था। तो बेकिंग जो है ना, इससे बच्चियों को बिल्कुल बिगिनिंग जो किचन का काम होता है ना, वो इस तरह की बेकिंग से शुरू होता है। ठीक है, अच्छा, इस तरह की बकायदा एक्टिविटी लिस्ट, एक्टिविटीज की लिस्ट होनी चाहिए पेरेंट्स के पास। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जानने वालों ने ऐसी लिस्ट बनाई हुई है। ठीक है, लेकिन ये लिस्ट जो है वो शुरू में तो छोटे बच्चों के लिए, चाहे वो लड़के हों लड़कियां हों, वो सेम हो सकती है। ठीक है, सिमिलर कम से कम हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे वो एज में बड़े होते हैं ना, तो फिर अल्लाह ताला का निजाम हरकत में आता है, लड़कियों का सिस्टम अलग होना शुरू हो जाता है, सोच अलग होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, उनकी लाइक्स और डिसलाइक्स अलग होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ बनाया ना, और लड़कों की अलग होनी शुरू हो जाती है। तो अब जो है ना, वो एक्टिविटी लिस्ट जो होती है तो फिर वो जेंडर स्पेसिफिक भी होनी चाहिए। ठीक है, कि लड़कियों के लिए अलग एक्टिविटीज हों, लड़कों के लिए अलग एक्टिविटीज हों, और कुछ कॉमन भी होती हैं। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर एक्टिविटीज में फिर गेम्स भी आ जाते हैं, बोर्ड गेम्स जो हलाल जायज बोर्ड गेम्स हैं जिसमें चेस नहीं आता। ठीक है, ऐसे बोर्ड गेम्स हों जो कि जिनमें कोई ऐसे बुरे मैसेजेस ना हो, मिसाल के तौर पर मोनोपोली। ठीक है, मोनोपोली जो है अगरचे के उलमा ने इसको नाजायज नहीं लिखा है, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास वो डॉलर्स होते हैं या पैसे होते हैं, उनसे आप कोई चीज खरीदते हैं, कोई जगह खरीदते हैं, कोई जगह खरीदते हैं, ठीक है, नाजायज नहीं लिखा है इसको, है नहीं है नाजायज बकौल जो मैंने फतवे पढ़े उसके हिसाब से। लेकिन अब छोटा बच्चा है, अब उसके जहन में बस यही कि मेरे पास ज्यादा पैसे आ जाए, मेरे पास और पैसे आ जाएं, मैं अमीर हो जाऊं, मैं अमीर हो जाऊं, मेरी मोनोपोली हो जाए, तो भाई ये सोच तो हम अपने बच्चों को नहीं देना चाहते ना, कि उसी उम्र से जो है वो आपने उनको लगा दिया अमीर बनने के ख्वाब देख रहा है। तो इन बातों का भी ख्याल रखना कि बच्चे की सोच जो है ना, जैसे कल तफसीर क्लास के अंदर बात हुई मर्दों, बल्कि कल नहीं परसों जो सूरह मायदा की तफसीर क्लास में बात हो रही है, और इसके अलावा मेरे ख्याल में आप लोगों की भी क्लास में शायद ये बात हुई है कि बच्चों की सोच की इसलाह, ऐसा ना हो कि सोच जो है वो गलत सिमत में खुद से जाने शुरू हो जाए या माँ बाप खुद उसको पुश करना शुरू हो जाए गलत सिमत में, दुनिया तलबी और मादियत परस्ती, राइट, और पैसे की हवस, इन चीजों की तरफ। तो ऐसे गेम्स को जो है वो अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। हर चीज को हराम होना जरूरी नहीं है अवॉइड करने के लिए ना, ऐसी नुकसानदेह चीजें भी तो होती हैं जो कि कुरान मजीद में या हदीस के अंदर हराम नहीं आई है, लेकिन नुकसान तो उनका किसी ना किसी दर्जे में है ना। मोनोपोली तो उस जमाने में होता भी नहीं था, लेकिन दुनिया की मोहब्बत का जो कॉन्सेप्ट है ये तो उस जमाने से हमें मिलता है ना, नबी अलैहिस्सलाम के दौर से, ठीक है। तो इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, घर के अंदर पेट्स का जितना मुमकिन हो आसानी के साथ आप पेट्स रखें, ये एक बच्चों के लिए इंगेजमेंट होती है, ठीक है। अगर आप कैट को अफोर्ड कर सकते हैं, किटन को घर के अंदर, बिल्ली, ठीक है। अब ये बिल्ली जो है वो अब जाहिर है उसके साथ और भी लवाजमात आती हैं, लेकिन ये एक बच्चों की मशगूलियत की चीज है, ठीक है। या कोई और बर्ड्स आप अफोर्ड कर सकते हैं, कि और कोई मसला नहीं होता बर्ड्स को रखने में, जैसे कि लोगों को एलर्जी वगैरह हो जाती है, तो बर्ड्स जो है वो नेचर से जितना कांटेक्ट जो है वो बच्चों का रख सकें। गार्डनिंग वगैरह आपके लिए मुमकिन है, हत्ता कि अगर बाकायदा आपके लिए क्यारियां और बाहर जो है वो गार्डन नहीं है, तो घर के अंदर पॉट्स तो रख सकते हैं ना, जिनके अंदर जो है वो इंडोर प्लांट्स लगा सकते हैं, और इसका जो काम है माँ खुद करें, लेकिन बच्चों को इन्वॉल्व करके करें, तो आस्ते आस्ते जो है वो बच्चों के अंदर भी इसकी का शौक पैदा हो जाता है, ठीक है। आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स हैं, हत्ता के अल्हम्दुलिल्लाह जिनके घरों के अंदर थोड़ी सी जगह बनती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तो कितने सारे साथियों ने जो है वो टेबल टेनिस जो है वो खरीद करके घर में रख लिया, ठीक है। टेबल टेनिस एक ऐसा गेम है जो कि यानी आप खेल सकते हैं घर के अंदर, उसके लिए कोई बाकायदा नेट लगाने की जरूरत नहीं होती है, उसके लिए कोई बहुत बड़ी जगह की जरूरत, हाँ जितनी जगह एक टेबल टेनिस के टेबल के लिए चाहिए उतनी जगह तो चाहिए होती है। तो घर के अंदर कुछ चीजें जो है वो जरा साइड वाइड में करके टेबल टेनिस जो है वो आप घर के अंदर सेटअप कर सकते हैं, फिर उसको फोल्ड करके खड़ा भी कर सकते हैं। ऐसी टेबल टेनिस जो है वो आप आ गई है, फोल्ड करके खड़ा कर सकते हैं, नीचे व्हील्स लगे होते हैं, उनको आप जो है मूव अराउंड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीजें जो है वो जितना अफोर्ड कर सकते हैं उतना घर के अंदर रखना, ठीक है, ताकि वो बुरे मशगूलियात से, और ये जो बोर्डम बोर्डम बच्चे बोर हो रहे हैं, बच्चे बोर हो रहे हैं, ठीक है, तो भाई उसके लिए आप एक्टिविटीज लिस्ट बनाए ना, अपने पास रखिए ना। लेकिन लिस्ट जो है ना वो जरूरी होती है, उसकी वजह क्या है, यानी रिटन डाउन लिस्ट, उसकी वजह क्या है कि जब बच्चे आपे से बाहर होते हैं ना, फ्रस्ट्रेट होते हैं, बोर होते हैं, रोना धोना मचाते हैं, उस वक्त जो है ना वो माँ का दिमाग जो है वो अच्छा खासा माउफ हो जाता है, या आप माओ को अच्छी तरह से ये बात पता है, दिमाग माउफ हो जाता है, फिर जो चीजें आपको पता भी होती है ना वो भी जहन में नहीं आ रही होती। लेकिन अगर आपने उनको लिखा हुआ होगा ना, तो फिर आप को याद आ जाएंगे उसको देख करके, लिस्ट को देख करके, ठीक है। तो डोंट ट्रस्ट योर मेमोरी टू मच, ठीक है, अपने दिमाग को, और आगे इसके ऊपर हजरत ने बात भी करी है, अपने दिमाग पे बहुत ज्यादा भरोसा ना क्या करें, बल्कि चीजों को लिख लिया करें, ठीक है ना, इससे काम आसान हो जाता है। लेगोज वगैरह का जिक्र भी आगे आएगा इंशाल्लाह। अच्छा, टाइम कितना रह गया, कैरम, टेबल टेनिस, लूडो, फुटबॉल, ये सब हम लोग खेल सकते हैं। जी, लूडो भी खेल सकते हैं, कुछ लोग उसको हराम कहते हैं, लेकिन हमारे उलमा जो है उसको हराम नहीं कहते, जब तक आप उसके अंदर जुआ शामिल ना करें। सिर्फ पासे के होने की वजह से लूडो हराम नहीं होता, ठीक है, ये बात पक्की ठक्की, इसके ऊपर सारी तहकीक मौजूद है। फुटबॉल, टेबल टेनिस, कैरम, बहुत सारी, घर के अंदर जो है वो अगर ऐसी कोई जगह है जिसके अंदर आप बास्केटबॉल का नेट लगा सकें, बास्केटबॉल की तो वो खाली बास्केट होती है, वो दीवार के अंदर लगा लेते हैं, बच्चा जो है वो घर के अंदर बास्केटबॉल खेल रहा है, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। अगर हम इसके ऊपर थोड़ा सा सोचें और लोगों से बात करें, आइडियाज शेयर करें, लोगों से सीखें, बेशुमार ऑप्शन होते हैं इस फोन और लैपटॉप के हवाले करने के अलावा, बेशुमार ऑप्शन होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। बच्चों के लिए कुछ बॉल्स लेकर घर में, छोटी टोकियां लेकर, बहुत सारी चीजें हैं, हत्ता कि हमने तो देखा जब कुछ भी खेलने के लिए हो, बच्चे जो है ना वो जो खाने, वो जो पानी पीने की बोतलें होती है ना प्लास्टिक की, ठीक है, डिस्पोजेबल बॉटल्स, उन्हीं से खेलना शुरू कर देते, डिब्बों से खेलना शुरू कर देते, यानी इतने क्रिएटिव होते हैं बच्चे कि कोई भी चीज लेकर के वो अच्छा खासा जो है ना। अच्छा, हमारे घर में माशाल्लाह छोटी साहिबा ने जो है ना वो वॉशिंग मशीन पुरानी जो है उसमें जंग लग लग करके वो 16 साल से इस्तेमाल कर रहे थे, बिलाखिर वो इस काबिल नहीं रही कि उसको, तो नई वॉशिंग मशीन अल्हम्दुलिल्लाह खरीदी। अब उसका जो जो डिब्बा है ना, कार्टन, वॉशिंग मशीन का साइज आपको पता है कितना बड़ा होता है, उसका जो कार्टन है उसको कभी फेंके नहीं, उसको हम इसमें घर बनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा सा घर बना लिया उस कार्टन को, उसके अंदर काट करके जो बाकायदा डोर बना लिया है, खिड़कियां बना ली हैं, अब उसके अंदर से जो बैठ करके जो है ना वो उन्होंने अपनी दुकान भी बना ली, आइसक्रीम शॉप बना ली। कार्टन है राइट, फेंकने की चीज है, लोग उसको फौरन फेंकें बाहर, लेकिन हमारे घर के अंदर उसमें अल्हम्दुलिल्लाह खुद भी खेल रही है हमारी बेटी और मोहल्ले की बच्चियां आकर के वो भी खेलती हैं। ठीक है, अब सोचे कौन सा इसके ऊपर जो है वो आपको, ठीक है वॉशिंग मशीन तो एक अलग जरूरत थी ना, लेकिन बच्चे के खेलने के लिए खिलौना तो फ्री में आ गया ना फिर। ऐसे आइडियाज होते हैं। ठीक है, हर वक्त जो है ना ये ढंडोरा पीटते रहना कि जी हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, और हमारे पास तो ये नहीं है वो नहीं है, और कैसे करें, और कुछ नहीं कर सकते हैं हम तो मजबूर हैं, और ये रोना रोना जो है ना ये एक अलग लाइन है, इस लाइन पे जो चल पड़ा बस वो रोता ही रहेगा, है ना। रोने की आदत होती है जिसके अंदर, ये जिसने अपनी ये आदत बना ली, अब बस उसके लिए सारी जिंदगी में रोना ही लिखा हुआ है, क्योंकि उसने खुद अपने तकदीर में रोना लिखा है। लेकिन जिसने रोने की लाइन से हट करके दूसरी लाइन बनानी है ना, अल्हम्दुलिल्लाह उस लाइन के ऊपर फिर बेशुमार चीज है अल्लाह का शुक्र अदा करने के, खुश रहने के लिए। ठीक है, तो इट्स अप टू अस कि हम कौन सी वाले रुख को इख्तियार करते हैं। अच्छा ये पढ़ ही लेते हैं आज हम, स्केचिंग ड्राइंग्स वगैरह बेशुमार ड्राइंग्स बहुत जबरदस्त किस्म की, एक हत्ता के बच्चियां ड्राइंग तो बहुत अच्छी करती हैं, हमने तो लड़कों को देखा एक से एक जो है वो ड्राइंग्स करते हैं, हमारे भतीजे साहब ने पता नहीं वो ड्राइंग्स करनी शुरू की, ये ऐसी जबरदस्त किस्म की पेंटिंग्स करनी शुरू कर दी उसने। अच्छा स्क्रीमिंग ना किया करें ये, अच्छा आगे नुक्ते की बात ये है कि बच्चों को हमेशा मुतबादिल दें, उनको नो ना कहा, ठीक है, यानी हराम काम के ऊपर नो कहें, झूठ बोलने के ऊपर नो कहें, किसी की पिटाई कर देने के ऊपर उसको नो कहें, ये मतलब नहीं है कि उसको कभी भी नो ना कहें, पिटाई कर रहा है तो करने दो, नो नहीं कहना, हजरत ने कहा था नो नहीं कहना बच्चे को, क्यों पिटाई कर रहा है अब लोगों की चीजें तोड़ रहा है और घर का सत्यानाश कर रहा है, नो नहीं कहना उसको, नहीं ये मतलब हर किसी इसका नहीं है ना। ठीक है, तो स्क्रीमिंग, हाँ स्क्रीमिंग के ऊपर नो, यानी माँ के लिए नो स्क्रीमिंग, और ब्लेमिंग ना किया करें, ब्लेमिंग, ठीक है, जैसे तुम तो सुनती नहीं हो, तुम तो मेरी बात मानती नहीं हो, ठीक है ना, ये ब्लेमिंग जो होती है ना, चाहे बगैर चीखे भी ब्लेमिंग की जाए, ये कंप्लीटली ना शट ऑफ कर देती है बच्चे को। ठीक है, अब माँ बाप कहते हैं जी इनके साथ अगर ऐसा कुछ हुआ था इन्होंने मुझे क्यों नहीं बताया, अब्बू कहते हैं इन्होंने मुझे क्यों नहीं बताया, अम्मी को जाके बताया मुझे क्यों नहीं बताया, वो भाई इसलिए क्योंकि आप उनको ब्लेम करते हैं, इसलिए कि आप उनके ऊपर गुस्सा होते हैं, राइट, तो जाहिर सी बात है वो आपसे फिर बात तो नहीं करेंगे ना, कहेंगे भाई और मेरी शामत आ जाएगी मैं अगर अब्बू को जाके बता दूंगा, या कुछ जगहों पर जो है वो अब्बू को बताते हैं अम्मी को नहीं बताते, क्योंकि अम्मी जो है वो चीखना चिल्लाना शुरू हो जाएंगी, मुझे जो है वो इल्जाम देना शुरू हो जाएंगी, तो जहां से उनको ऐसा एटीट्यूड मिलता है वहां से वो शट ऑफ हो जाते, अब माँ बाप जो है वो भाई क्यों बात नहीं करते हमसे, क्यों हमें नहीं बताते, क्यों हमसे शेयर नहीं करते, भाई आप यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। एक बात याद रखें, बहुत से माँ बाप जो है ना अपने बच्चों की शिकायतें करते हैं आकर के, हम उनको एक बात कहते हैं जिससे मौका मिल, जिसको मौका मिलता है ना उसको एक ही बात कहते हैं, हम कहते हैं कि क्या आप अपने बच्चों को मार्केट से खरीद के लाए थे, बाजार से खरीद के लाए थे अपने बच्चों को, कि बाजार वालों ने जो है ना वो आपसे पैसे तो ले लिए माल अच्छा नहीं दिया, सोचें जरा इस वाली बात के ऊपर, क्या अपनी औलाद को मार्केट से खरीद के लाए थे कि पैसे लिए लेकिन माल अच्छा नहीं दिया आपको, क्या ऐसा है, यही औलाद तो अल्लाह ताला ने आपको पहले दिन से दी है ना, जो इसके साथ किया है वो आपने किया है, जो इसके साथ किया है वो आपने किया है, ठीक है ना, अब उसकी जो अच्छी आदत बनी है आपने बनाई है, जो उसकी बुरी आदत बनी है यू आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल, डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल ये इस तरह से कि भाई आपने उसके सामने बुरे काम किए तो उस वजह से उसकी बुरी आदत बन गई, और इनडायरेक्टली का मतलब ये है कि आपने उसको ऐसे माहौल में जाने दिया जहां पे उसने दूसरों को देख करके जो है वो बुरी आदतें एक्वायर करी हैं, चाहे स्कूल हो, चाहे खानदान के ऐसे लोग हों, चाहे मोहल्ले के ऐसे लोग हों, आपने उसको उधर जाने दिया तो उसने वहां से फिर ये आदतें इनको एक्वायर करी हैं, तो आप इनडायरेक्टली उसकी इस बुरी आदत का इरेस्पॉन्सिबल है। अब भाई अगर हो गया है नुकसान तो अब इसको ठीक करने की कोशिश करें ना, बजाय इसके कि इसके ऊपर जो है वो लैमेंट करते रहे। मतलब लैमेंट तो और करना अच्छी बात है, इसके ऊपर जो है वो बच्चे के दुश्मन बन जाए, बच्चे को जो है वो इल्जाम देना शुरू कर दें, ये तो है ही ऐसा, ये तो है ही वैसी, और ये तो ये खराबी है, ये तो वो खराबी है। भाई अपने हाथ की खराबी है, अपना क्या धरा है, तो इसका क्या तरीका है? अल्लाह ताला से माफी मांगें, क्योंकि बच्चा भी अल्लाह ही की मखलूक है। जिस तरह आप अल्लाह की बंदी है ना, उसी तरह बच्चा भी अल्लाह का बंदा है, अल्लाह की बंदी है। तो अल्लाह ताला से माफी मांगें कि ए अल्लाह, आपने जो मुझे ये अमानत दी थी, मैं उसका ख्याल नहीं कर सकी, राइट, मैं उसका ख्याल नहीं कर सकी, आप मुझे माफ कर दीजिए इसके ऊपर। अल्लाह से माफी मांगना और फिर उसके बाद अल्लाह से मदद मांगना, ठीक है कि अल्लाह अब इसको फिक्स करने में आप मेरी मदद कर दीजिए, ठीक है। पहला वही फर्स्ट फर्स्ट टाइम तो हम आपको बातें नहीं बता रहे, कई दफ़े बातें हो चुकी हैं। सबसे पहले माफ़ी मांगना, और माफ़ी मांगने के लिए भी पहले काम क्या करना होता है, एक्नॉलेज करना कि ये मेरी मिस्टेक है, ये मार्केट वाले की मिस्टेक नहीं है कि जहाँ से मैं बच्चे को खरीद के लेकर आई थी, दुकान वाले की मिस्टेक नहीं है क्योंकि मैं किसी दुकान से खरीद के नहीं लाई, ठीक है। तो खुद ओन करना रिस्पॉन्सिबिलिटी को इस प्रॉब्लम को, कि ये मेरी वजह से प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। तो जब ओन करेंगे, एक्नॉलेज करेंगे अपने मिस्टेक को, तभी उससे माफी मांगेंगे ना, उस पर अल्लाह ताला से माफी मांगेंगे, ठीक है। तो माफी मांगना, फिर उसके बाद अल्लाह ताला से मदद मांगना, और तीसरा काम क्या होता है जी, ये आप बता दें, फिर हम आपकी जान छोड़ते हैं। तीसरा काम क्या करना है? सही जवाब देंगे कोई? तीसरा काम क्या करना होता है इसके बाद? अल्लाह से माफी मांग ली, फिर अल्लाह ताला से मदद मांग ली, अब क्या करना है? कोई असबाब इख्तियार करना? नहीं, बिल्कुल नहीं असबाब इख्तियार करना, तीसरा काम ये नहीं है जी। तीसरा काम ये है जो उन्होंने जवाब दिया, इल्म हासिल करना, इल्म हासिल करना, ठीक है। फिर जो इल्म हासिल किया है उस इल्म के मुताबिक असबाब इख्तियार करना, उस इल्म के मुताबिक असबाब इख्तियार करना, ये चौथा काम है असबाब इख्तियार करना। तीसरा काम है इल्म हासिल करना, ठीक है, जो कि असबाब ही का इल्म होता है, ठीक है जी। ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व होती है, अल्लाह ताला मदद भी फरमाते हैं, असबाब भी इल्म भी अता फरमा देते हैं, और फिर इल्म के मुताबिक असबाब भी इख्तियार करना मुमकिन बना देते हैं, तौफीक अता फरमा देते हैं, खलास खत्म बात, ठीक है। रोने धोने की जरूरत ही कोई नहीं लोगों के सामने जा करके या किसी और का, इल्म हासिल करने के तो जाहिर है पूछना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, हाँ मुझसे ये गलती हो गई, ऐसा मसला हो गया, तो मैं क्या करूँ उसको, कैसे हल करूँ उसको, इसके लिए तो लोगों को बताना पड़ेगा जिनसे इल्म हासिल करना है, ठीक है। लेकिन बाकी लोगों के सामने जाके रोना धोना, इसकी कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तो हजरत फरमाते हैं कि बच्चे ये सुनकर उल्टा हैरान हो जाते हैं कि अम्मी ये क्यों कह रही हैं, तो उनको मुतबादिल दिया करें, बच्चे इससे ज्यादा जल्दी मानते हैं। जब आप कहेंगे कि बेटा ये खेलने की बजाय तुम ये खेल लो, तो वो माँ की बात को फौरन मान लेंगे, ठीक है। बच्चे जब बाहर दोस्तों में जाएं और फिर वापस आए, तो उनसे जरूर पूछें कि तुमने क्या किया, क्या बातें की। इन मालूमात का उनसे लेना बच्चों की इसलाह के लिए बहुत जरूरी होता है, बच्चे खुद नहीं बताएंगे, उनको अगर रबिश गलत बातें सुनने को मिली है बाहर, तो वो सहमे रहेंगे, खामोश रहेंगे, हैरान रहेंगे, ठीक है, क्योंकि घर में आपने उनकी अच्छी तरबियत करी है, बाहर उन्होंने बुरी बुरी बात सुनी है, तो वो परेशान से हो जाएंगे ना कि बाहर उन्होंने ऐसी बातें कैसे सुननी, कैसे उन्होंने ये बात करी। तो ये माँ की जिम्मेदारी है कि असल बात को देखे, उसकी उकाबी आंख होनी चाहिए, उकाबी निगाह होनी चाहिए, वो बच्चे से फौरन पूछे कि बताओ आपने क्या खेला, तुमने क्या बातें की, तुम्हारे दोस्तों ने क्या कहा, तो बच्चे अपनी हर बात सच सच बता देते हैं। अपने बच्चे के साथ आप ऐसा ताल्लुक रखें कि वो आपको ट्रस्ट वर्दी समझे, वो आप पर एतमाद किया करें, ठीक है ना। यानी ये कैसे बनाएंगे अपने आप को ट्रस्ट वर्दी बच्चे के लिए, कि जब हम बच्चे को के ऊपर चीखें चिल्लाएंगे नहीं और बच्चे को ब्लेम नहीं किया करेंगे, तब बच्चा बच्चे की निगाह में हम ट्रस्ट वर्दी बन जाएंगे, ठीक है ना। अब बच्चा जो है ना वो आकर के सब बताएगा, हत्ता कि कुछ बच्चे जो है ना फिर चिढ़ना शुरू हो जाता है, ओ ये तो अपने घर जाके सब कुछ बता देता है, वो चिढ़ने दें उनको, बच्चे को भी ये समझाएं कोई बात नहीं, वो आपसे चिढ़ते हैं, वो आपसे डरते हैं, या वो आपसे दूर रहते हैं, कोई बात नहीं, उनकी फिक्र ना करें, अल्हम्दुलिल्लाह आपने सब बताना है आगे, ठीक है। लेकिन खाली कहने से काम नहीं होता, बल्कि ऐसा बनना पड़ता है कि बच्चे आप पे ट्रस्ट करें, ठीक है। बाकी जो असल टॉपिक से रिलेटेड जो बातें हैं वो फिर घर को ऑर्गेनाइज करना, वो फिर अगली क्लास में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। किसी को कोई सवाल अगर पूछना हो तो पूछ सकते हैं। तुमसे स्क्रीन क्यों खत्म कर दी, सामने रहने देती हूँ। ठीक है, चले, कोई सवाल नहीं है तो यहाँ पे हम क्लास खत्म करते हैं। वा आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम।